हवेली, वही शाम। रसोई में शोर उतना ही था जितना इस हवेली में अनुमति है, धीमा, दबा हुआ और मर्यादा के दायरे में। तांबे की कढ़ाही में दाल हल्की सी उबल रही थी, भाप ऊपर उठकर रसोई की पुरानी दीवारों से टकरा रही थी। श्यामली चूल्हे के सामने खड़ी थी, पल्लू कंधे पर, आंखें दाल में, पर मन कहीं और अटका हुआ। दिन भर रत्ना देवी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। मर्यादा, रानी बनना, अपनी जगह समझना, हर शब्द जैसे किसी भारी चूड़ी की तरह उसके हाथों में खनक रहा था। बाकी नौकर भी चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। हवेली के नियम वही, बहू रसोई में हो तो किसी भी आवाज का सुर थोड़ा और दब जाना चाहिए। तभी पीछे से मधु आई, धीमी चाल पर चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट। उसके हाथ में वही मोटा सा काला एल्बम था जिसे देखकर श्यामली की सांस एक पल को अटक गई। मधु पास आई और बर्तन धोती गुड़िया को एक इशारे से हटाकर श्यामली के बगल में खड़ी हो गई। बहू जी, उसकी आवाज में एक अजीब सा फुसफुसाता हुआ उत्साह था, ये देखो। श्यामली ने दाल चलाते चलाते फुर्सत के 2 सेकंड निकाले और एल्बम पर नजर डाली। फैमिली फोटो का एल्बम है, मधु ने लगभग राज खोलते हुए कहा। हर साल की फोटो इसमें है। श्यामली ने अप्रिन से हाथ पोंछे और एल्बम खोल लिया। पहले पन्ने पर पुरानी थोड़ी फेडेड तस्वीरें थीं, रत्ना देवी और दिवंगत रतननाथ जी की। दूसरा पन्ना विश्वनाथ की फोटो, एक कोने में छोटा सा आर्यन। तीसरा पन्ना पलटा और श्यामली की उंगलियां ठहर गईं। एक बड़ी सी फोटो, शायद कोई त्योहार। बीच में खड़े थे युवा विश्वनाथ, उम्र वही, लगभग जो आर्यन की है। चेहरे पर वही तेज नजरें, वही भौहों का एंगल, वही जबड़े की लाइनों पर हल्की कसावट। श्यामली के मुंह से बिल्कुल अनजाने में निकल गया, ये तो बिल्कुल आर्यन जैसे लग रहे हैं। मधु मुस्कुराई, हाँ बहू जी, सब यही कहते हैं, आर्यन जैसा दिखता है, या कहें आर्यन बिल्कुल मालिक जैसा दिखता है। श्यामली ने फोटो 2 सेकंड और देखा, दिल में कुछ अजीब सा खिंचा, जैसे 2 समय एक दूसरे पर चढ़ गए हों। क्या आर्यन भी उतना ही गहरा, उतना ही तेज? ये सोचते हुए ही रसोई के दरवाजे की दहलीज कांपी। खाना बनाया नहीं? देखी अधिकार भरी आवाज, रत्ना देवी। सभी नौकर एक झटके में सीधे खड़े हो गए। श्यामली ने तुरंत दाल को ढका, रोटी की टोकरी संभाली और परोसने के लिए आगे बढ़ी। डाइनिंग हॉल, रात। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय विश्वनाथ के, वो आज शहर से बाहर थे ऑफिस मीटिंग के लिए। बाकी कुर्सियां भरी थीं। रत्ना देवी अपने स्थिर सुसंयमित अंदाज में, शकुंतला, रम्या और विशाल और आर्यन, जिसकी आंखें जाने क्यों बार बार श्यामली पर ही टिक रही थीं। श्यामली ने सबके आगे थालियां रखीं। उसकी चाल शांत, संजीदा, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट। रम्या ने सबसे पहले कौर लिया और मुस्कुराकर बोली, वाह मामी जी, आज तो मजा ही आ गया, दाल बिल्कुल होटल जैसी है। श्यामली हल्के से मुस्कुराई। रम्या हमेशा से उसे पसंद करती थी, क्योंकि श्यामली की उपस्थिति में हवेली का माहौल थोड़ा कम भारी लगता था। विशाल ने फोन से नजर उठाई, अच्छा है। उसका अच्छा बोलना किसी और के बहुत शानदार बोलने के बराबर था। रत्ना देवी ने चम्मच से सब्जी एक बार चखी, चेहरे पर जरा भी नरमाहट नहीं आई, पर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उनका चुप रह जाना आमतौर पर तारीफ ही माना जाता था, पर जहां सब तारीफों में थे, शकुंतला का स्वभाव अलग था। उसने नखरे से कहा, और अच्छा हो सकता था, लेकिन आज वो बात नहीं। रम्या तुरंत बोल पड़ी, क्या माँ, रोज जैसा ही है, आपको तो बस बात निकालनी है। श्यामली चौंकी नहीं, वो ये ताना सुनने की आदी हो रही थी। उसने सिर झुकाकर बस रोटी परोसी। रत्ना देवी ने शकुंतला को एक तीखी नजर से चुप किया, फिर उन्होंने श्यामली को ठहर कर देखा, जैसे वो उसके चेहरे पर हर भाव को पढ़ना चाहती हों। आर्यन की नजर भी उसी समय श्यामली पर थी, पर उसकी नजर में कोई जांच नहीं थी, एक तरह की चिंता थी, या शायद सुरक्षा, जैसे वो चुपचाप देख रहा हो कि श्यामली को कहीं असहज महसूस ना हो। श्यामली ने सबको सब्जी परोसी, फिर धीरे से अपने लिए कोने में बैठ गई। और तभी रत्ना देवी ने धीमे पर तीखे स्वर में कहा, श्यामली,
श्यामली तुरंत उठी। जी माँ, फैमिली फोटो के लिए कल से तैयारी शुरू कर देना। मैं नहीं चाहती कि दो दिन बाद कोई कमी रह जाए। उनके शब्दों में ना कोई प्यार था ना नाराजगी, बस आदेश। श्यामली ने सिर हिलाया। जी माँ, रम्या उत्साहित होकर कहा। मामी, मैं आपकी साड़ी सिलेक्शन में मदद करूंगी, हम मैचिंग बैंगल्स भी लेंगे। शकुंतला ने ताना मारा। हाँ, जैसे इसे कोई फैशन समझ आता हो। आर्यन ने अचानक कुर्सी का हाथ कसकर पकड़ लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। श्यामली ने हल्की सी मुस्कान दी। रम्या ठीक है, कल देखेंगे। रम्या खुश हो गई। शकुंतला का चेहरा और बिगड़ गया। कुछ देर बाद सब खाना खा चुके थे। नौकर बर्तन उठाने लगे। हॉल थोड़ा शांत हो गया। तभी आर्यन ने उठते उठते हल्की धीमी आवाज में कहा, खाना अच्छा था। उसका ये कहना सीधा नहीं था, वो सीधे साफ श्यामली की तरफ था, और सब जानते थे। श्यामली ने नजर उठाई, आर्यन की आंखों से टकराई एक पल के लिए, फिर उसने बस इतना कहा, धन्यवाद। रत्ना देवी ने यह सब देखा। उनकी आंखों में एक पल को किसी पहेली का टुकड़ा चमका, फिर गायब हो गया। शकुंतला ने तीसरे बार ताना दिया। मुझे तो लगता है आर्यन को अभी भी होटल का खाना ज्यादा पसंद है। आर्यन ने पहली बार शकुंतला की ओर देखा और धीमे संयत स्वर में बोला, नहीं, अब घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी नजरें फिर एक पल श्यामली पर गईं। श्यामली का दिल अजीब सा कांपा। क्यों? उसका जवाब वो खुद नहीं जानती थी। रात का वक्त, हवेली का बड़ा बरामदा। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हवेली में रात की हवा ठंडी और लंबी लगती थी, जैसे हर दरवाजा, हर खिड़की, हर दीवार रात को और भी गहरी कर देती हूँ। श्यामली बरामदे में आई, ताजी हवा लेने और खुद को थोड़ा संभालने। उसी समय पीछे से धीमी शांत बैरों की आवाज आई, आर्यन। वो अपनी जगह पर ही रुक गया, थोड़ा दूर, जैसे मर्यादा की रेखा बनाकर। श्यामली उसके आने से चौंकी नहीं। हवेली में उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस हो जाती थी, पर आज वो कुछ अलग था, शांत पर गहरा। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही, फिर आर्यन ने धीरे से कहा, आज तुम परेशान थी सुबह से? श्यामली ने बाहर अंधेरे को देखते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ा थकी थी। आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन दूरी बनाई रखी। अगर कोई बात हो तो बता देना, मैं हूं ना। श्यामली का गला हल्का सा रुंधा, पर उसने खुद को संभाला, सब ठीक है। आर्यन ने उसे देखा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक होना और ठीक कहना दो अलग बातें हैं श्यामली। उसके शब्द हवेली की ठंडी हवा में कुछ गर्म छोड़ गए। श्यामली ने धीरे से कहा, ये हवेली, ये परंपराएं, नई हूं अभी इसमें, सीख रही हूं। आर्यन की आंखों में चिंता का हल्का सा साया आया। तुम अकेली नहीं हो, श्यामली ने नजरें फेर ली। मां ने कहा है मर्यादा में रहना होता है, आर्यन ने हल्की सी कड़वाहट से कहा। कुछ लोग मर्यादा को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। श्यामली चौंकी, उसने उसकी ओर देखा, पर आर्यन की आंखें बहादुरी से उसकी आंखों से जुड़ी रहीं। श्यामली कुछ और बोल पाती उससे पहले बरामदे के कोने में कदमों की आवाज आई। मधु, बहुजी, मालकिन बुला रही है अभी। श्यामली का दिल एक पल को डूबा। आर्यन की आंखों में चिंता और गहरी हुई। श्यामली जाने लगी, लेकिन दो कदम बाद पीछे मुड़ी। आर्यन अब भी खड़ा था, उसी जगह, उसी नजर के साथ, और उसकी नजर बहुत साफ कह रही थी, डरो मत, मैं हूं। श्यामली ने हल्के से सिर झुकाया और हवेली के अंदर चली गई। बरामदे में हवा और भी ठंडी हो गई और आर्यन के चेहरे पर एक फैसला और गहरा।